हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 372। फिर आदित्य थोड़ा आगे बढ़ा। उसे समझ आया कि सुनैना हाथ में जो चीज़ पकड़े हुए थी वो शायद उनकी शादी की एल्बम थी। आदित्य को समझ नहीं आया कि सुनैना इस तरह उनकी शादी की एल्बम पकड़े सो रही थी। आज तक उन दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा था, क्योंकि शादी की यादें उन दोनों के लिए कोई ख़ास खूबसूरत यादें नहीं थीं। हाँ, आदित्य के लिए तो ये उसकी मर्जी से हुई शादी थी, लेकिन सुनैना के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए उसने आज तक उन शादी की तस्वीरों को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन आज वो एल्बम इस तरह पकड़े सो रही थी, और वो एल्बम खुला हुआ भी था। इसका मतलब आदित्य समझ गया कि वो एल्बम देखते देखते सो गई होगी। ये सोचते हुए आदित्य कन्फ्यूजन से वहाँ आगे आया। पहले उसने सुनैना के हाथ से एल्बम ले ली और उसे खोल कर देखा। उसमें जो तस्वीर थी वो उन दोनों के फेरों से पहले की थी, जब वो सुनैना की मांग में सिंदूर भर रहा था। सुनैना काफ़ी गुस्से में लग रही थी, जबकि आदित्य के चेहरे पर एक खालीपन था। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। सामने से फोटोग्राफर ने ही वो फ़ोटो क्लिक की होगी, शायद उन दोनों को पता भी नहीं था। उन दोनों में से कोई भी अपनी शादी और फ़ोटोशूट को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं था। वो तस्वीर देखकर आदित्य के दिमाग में अपनी शादी वाले दिन की यादें ताज़ा हो गईं। फिर उसने उस फ़ोटो के नीचे साइट पर पड़ी तारीख देखी। तारीख पर नज़र पड़ते ही उसने अपने मन में कहा, एक साल, हमारी शादी को एक साल होने वाला है अगले हफ्ते। ये एक साल कितनी जल्दी बीत गया। मुझे ऐसा लग रहा है तस्वीर देखकर जैसे ये कल की ही बात हो जब ये सब कुछ हुआ था, लेकिन इस बीच तो कितना कुछ हो गया है हमारे बीच। लेकिन सोना को ऐसा क्या देखना था इस एल्बम में जो कल उसने मेरे सोने के बाद ये निकला। आई होप सब ठीक हो और उसकी याददाश्त कहीं फिर से तो नहीं। इतना सोचते हुए आदित्य को उसकी फ़िक्र हुई। फिर उसने अपने मन में कहा, नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, उसकी याददाश्त नहीं गई है और सब कुछ ठीक होगा। शायद वो कुछ और सोच रही होगी। कोई नहीं, मैं इस बारे में उससे बात करूँगा, जब वो ठीक फील करेगी तब। ये सोचते हुए उसने एल्बम बंद करके टेबल पर रख दिया। हल्का सा झुककर अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेटी हुई सुनैना को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। सुनैना को गोद में उठाए हुए आदित्य मुस्कुरा रहा था। सुनैना उसकी गोद में हल्का सा कसमसाई, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। आदित्य ने उसे आराम से बेड पर लिटा दिया और कंबल उसके ऊपर डालकर खुद वॉशरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद आदित्य नहा धोकर वॉशरूम से बाहर निकला। उसके बाल गीले थे। उसने बेड की तरफ देखा तो सुनैना अभी भी पहले की तरह सो रही थी, बहुत ही आराम से आंखें बंद किए हुए। कुछ पल रुककर सुनैना की तरफ देखा, फिर अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए वो मिरर के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने बाल ठीक करने के लिए ब्रश उठाया, उसे कमरे के बाहर से आती हुई आवाज़ सुनाई दी, भैया भैया, उठ गए हो क्या आप लोग? देखो, आप लोगों से मिलने के लिए लोग आए हैं। भाभी के भाई बहन उन्हें देखने के लिए आए हैं। क्या भाभी जाग गई हैं? इतना बोलते हुए स्वीटी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। आदित्य नहीं चाहता था कि स्वीटी की आवाज़ या दरवाजे के खटखटाने से सुनैना की नींद टूट जाए, इसलिए उसने ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखकर जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ आया। आदित्य जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए सामने दरवाजे पर खड़ी स्वीटी से बोला, आराम से थोड़ा, धीरे बोलो स्वीटी, सुनैना अभी सो रही है, शायद दवाइयों का असर है, मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद टूट जाए। आदित्य ने इतना कहा तो उसकी बात सुनकर स्वीटी भी अपनी आवाज़ धीमी करती हुई बोली, सॉरी सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था, वैसे भी 11 बज रहे हैं तो मुझे लगा कि अब तक तो आप दोनों ही जाग गए होंगे, और वे लोग आए हैं, मतलब नैना दी और अरुण। स्वीटी की बात का आदित्य कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही पीछे से सुनैना की आवाज़ आई, नैना, नैना दी मुझसे मिलने आई है, कितने दिनों के बाद, और तुम मना क्यों कर रहे हो, और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मैं दवा खाकर तो नहीं सोई थी, वैसे मुझे ठीक से याद नहीं, शायद खाई होगी मैंने, हाँ, इस सरदर्द की दवा। लेकिन तुम ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो? सुनैना काफ़ी कन्फ्यूजन से उठते हुए उसकी तरफ देख रही थी। शायद उसने आदित्य और स्वीटी के बीच हो रही बातें भी सुन ली थी, क्योंकि दरवाजे की आवाज़ और स्वीटी की तेज़ आवाज़ से ही उसकी नींद खुल गई थी। लेकिन आदित्य उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। सुनैना की ऐसी बातें सुनकर आदित्य काफ़ी इमोशनल होते हुए बोला, इस तरह का मजाक मत किया करो प्लीज सोना, सुनैना ने काफ़ी बेरुखी से कहा, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे साथ मजाक करने का, और वैसे भी तुम कौन सा मजाक समझते भी होगे, ऐसे गुस्से में तो लगते हो हर वक्त, और रहने दो, मुझे अभी बात नहीं करनी तुमसे, मैं बहस बाद में कर लूँगी, अभी मैं अपने भाई बहनों से मिलकर आती हूँ। इतना बोलते हुए सुनैना थोड़ा एक्साइटेड होकर एकदम से उठी। उसे अपने सिर में झटका लगने की वजह से तेज़ दर्द महसूस हुआ। उसने एक हाथ अपने सिर पर रखा और बोली, आह मेरा सिर, ये सिर इतना क्यों दुख रहा है, मुझे ज्यादा चोट आई थी क्या? पता नहीं क्या हुआ है मुझे, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इतना बोलते हुए उसने आदित्य और स्वीटी की तरफ एक नजर देखा। वे दोनों ही एकदम कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी स्वीटी ने धीमी आवाज में आदित्य से कहा, भाई भाभी की याददाश्त फिर से चली गई है क्या? ऐसे कब तक चलेगा? स्वीटी ने ये इतनी धीमी आवाज में बोला कि सुनैना ये नहीं सुन पाई, लेकिन वो उठकर दरवाजे की तरफ आ गई। आदित्य ने भी उसकी बात पर बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, स्वीटी तुम उसके साथ ही रहना, मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। सुनैना भी अब तक उठकर दरवाजे से बाहर निकल गई थी, अपने सिर दर्द को इग्नोर करते हुए। उसे लगा कि ये चोट की वजह से ही है और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन चोट उसे लगी कैसे, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अभी वो अपने भाई बहनों से मिलने के लिए एक्साइटेड और खुश है, इसलिए उसने सिर दर्द के बारे में इतना नहीं सोचा। आदित्य की बात सुनकर स्वीटी भी तुरंत ही सुनैना के पीछे पीछे वहां से चली गई। उन दोनों के वहां से जाने के बाद आदित्य का चेहरा एकदम उतर गया। वो इस बारे में सोचते हुए वापस कमरे के अंदर आया। अंदर आकर वो वहां रखे हुए सिंगल काउच पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया और अपने मन में बोला, इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था, जरूर सुनैना को फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है और वो फिर से कुछ दिनों या फिर शायद महीनों की बातें भूल गई है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, इससे तो उसकी मेंटल हेल्थ और भी खराब हो जाएगी। वो ऐसे बार बार चीजें भूलती रहेगी तो कभी कुछ और कभी पता नहीं, अब पता नहीं उसे कितने टाइम की याद है। क्या करूंगा मैं अब, गॉड प्लीज हेल्प मी ना, बोलते हुए आदित्य ने ऊपर की तरफ देखा। ये सब सोचकर उसे बहुत टेंशन हो रही थी, सबसे ज्यादा तो सुनैना की। उसके पास अभी कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया।
दूसरी तरफ से डॉक्टर के कॉल रिसीव करते ही उसने डॉक्टर को इस बारे में बताया। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, ये सब कुछ उनकी चोट की वजह से हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आप परेशान ना हों, मैं बस अभी आता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए। लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से उन्हें जो भी बात बता सकते हैं वो बताइए और याद दिलाने की कोशिश करिए। कोई ज्यादा जोर मत दीजिएगा, लेकिन कल या पिछले हफ्ते में जो कुछ भी हुआ, खासकर ये कि आपकी बीवी को चोट कैसे लगी, इस बारे में उनसे बात करिए, पूछिए और देखिए उनको इस बारे में कितना याद है और वो क्या सोच रही हैं इस बारे में, डॉक्टर ने आदित्य को समझाते हुए कहा। ये बात आदित्य को कुछ हद तक समझ में आई, लेकिन फिर उसने डॉक्टर से पूछा, पर डॉक्टर इसकी वजह से उसके दिमाग पर और ज्यादा जोर तो नहीं पड़ेगा ना, और अगर कहीं कुछ भी गलत हो गया और ज्यादा नेगेटिव असर या फिर अगर उसकी याददाश्त पूरी चली गई तो? आदित्य परेशान होते हुए डॉक्टर से ये सब पूछता है तो डॉक्टर ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, डरने की बात नहीं है मिस्टर सिंघानिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके सिर के जिस हिस्से में चोट आई है वहां मेमोरी रिस्टोर होती है, लेकिन ये चोट इतनी गहरी नहीं है कि उनके पूरे हिस्से को नुकसान पहुंचा हो, इसलिए उनकी कंप्लीट मेमोरी लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए मेरे आने तक। इतना बोलकर डॉक्टर कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाले थे कि तभी आदित्य ने कहा, डॉक्टर एक मिनट, वो सुनैना के घर वाले, मेरा मतलब है कि उसके भाई बहन भी उसे मिलने आए हैं, तो उनके सामने क्या मैं ये सब पूछ सकता हूँ? पता नहीं वो कैसा बर्ताव करेगी, मेरा मतलब है पहले की तरह अगर उसने मुझे कुछ कहा या फिर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतना बोलते हुए आदित्य बहुत ज्यादा हाइपर हो गया तो डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, पहले आप खुद को स्टेबल करिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। उसके भाई बहन या जितने भी मेंबर आपके घर में हैं आप उन सबको अलग ले जाकर पहले इस बारे में बता दीजिए और फिर अच्छी तरह से प्लान करके आप अपनी वाइफ को सब याद दिलाने की कोशिश करें, जिसमें सारे ही लोग आपका साथ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर ने बड़ी ही आराम से आदित्य को ये सब समझाया। डॉक्टर की ये बात आदित्य को भी कुछ हद तक सही लगी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके डॉक्टर, मैं समझ रहा हूँ और मैं ट्राई करता हूँ, जब तक आप जरा जल्दी आने की कोशिश करिए। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी मिस्टर सिंघानिया, मैं बस निकल ही रहा हूँ हॉस्पिटल से, कुछ देर में मैं आपके घर ही आ जाऊँगा, लेकिन आधे एक घंटे का टाइम लगेगा मुझे, जब तक आप मैनेज करिए। डॉक्टर ने आदित्य को क्लियरली पूरी बात बता दी। फिर आदित्य ने उन्हें और ज्यादा जल्दी आने के लिए फोर्स नहीं किया। कहीं ना कहीं वो समझ रहा था कि डॉक्टर के और भी ज्यादा कमिटमेंट होते हैं और उनके पास एक ही पेशेंट सिर्फ सुनैना तो नहीं है, इसलिए ये सुनकर आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर पूरा रेडी होकर बाहर रूम से निकलता हुआ लिविंग एरिया की तरफ आ गया। क्रमशः